पृष्ठ संख्या 155 अध्याय 9 इतिहास में नैतिक न्याय मोरल जजमेंट इन हिस्ट्री। मेंडेलबॉम के अनुसार तथ्य की अस्वीकृति अथवा पुष्टि को न्याय कहते हैं। विद्वान का यह वाक्यांश इतिहास के संबंध में यथार्थ प्रतीत होता है। इतिहास अन्वेष्य होता है। अन्वेष्य का अर्थ सदैव स्पष्ट अथवा प्रच्छन्न रूप में नैतिक होता है। अतीत की गवेषणा इतिहासकार करता है, उसका एक दायित्व होता है। दायित्व का स्वरूप नैतिक तथा निहितार्थ होता है। दार्शनिक तथा इतिहासकार इस दायित्व की अनुभूति करते हैं। हीगेल, मार्क्स, स्पेंगलर, टैनबी आदि दार्शनिक इतिहासकारों ने नैतिकता तथा निहितार्थता के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अन्वेषण किया है। इतिहास के ऐतिहासिक तथ्यों के पीछे व्याख्या होती है और ऐतिहासिक व्याख्या में नैतिक निर्णय संयुक्त रहते हैं। इतिहासकार अपनी व्याख्या में समसामयिक समाज के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है। इतिहासकार के निर्णय को प्रभावित करने में समसामयिक सामाजिक मूल्यों की प्रमुख भूमिका रहती है। बटरफील्ड ने मूल्य संपृक्त निर्णय को इतिहास का निर्णय अथवा न्याय की संज्ञा दी है। जीवन में मनुष्य सर्वाधिक महत्व धर्म तथा स्वतंत्रता को देता है। दोनों का पारस्परिक संबंध श्रृंखलाबद्ध है। ईसाई धर्म की सत्यता में ईसाई में ईश्वर अपनी नैतिकता की अभिव्यक्ति करता है। समाज में न्याय देने का अधिकार न्यायाधीश और इतिहासकार को होता है। न्यायाधीश का प्रमुख उत्तरदायित्व कठोर से कठोर न्याय द्वारा अराजक तत्वों से समाज की रक्षा करना है। यदि इतिहास ज्ञान है तो इस ज्ञान का अभिप्राय अतीत के उदाहरणों द्वारा वर्तमान को नियंत्रित करना तथा भविष्य का मार्गदर्शन करना है। इतिहासकार के न्याय का उद्देश्य अतीत के पात्रों से संबंधित बुरे कार्यों पर नैतिक निर्णय देकर वर्तमान समाज की रक्षा करना है। इतिहासकार के नैतिक न्याय के संबंध में दो प्रकार की अवधारणा है। इतिहासकार को नैतिक न्याय देने का अधिकार है तथा पृष्ठ संख्या 156 इतिहासकार नैतिक न्याय नहीं दे सकता है। इन दोनों अवधारणाओं का सूक्ष्म विवेचन आवश्यक है। इतिहास नैतिक न्याय दे सकता है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में इतिहास लेखन की एक नवीन प्रवृत्ति का उदय हुआ, जिसका अभिप्राय समसामयिक समाज को नैतिकता से अवगत कराना था। इंग्लैंड इस प्रकार के इतिहास लेखन का प्रमुख केंद्र था। इस प्रवृत्ति का कारण व्यक्तिवादी इतिहास लेखन था। रोजबेरी ने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान में इंग्लैंड की जनता इतिहासकारों से अपेक्षा करती है कि वे इस तथ्य को स्पष्ट करें कि क्या नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा व्यक्ति था। जब इतिहासकार अतीत के महापुरुषों का मूल्यांकन करता है तो उसका निर्णय मूल्य संपृक्त नैतिक न्याय बन जाता है। E.H. कॉर ने स्वीकार किया है कि इतिहासकार अपनी पुस्तक के पृष्ठों में अतीतकालिक व्यक्तियों के जीवन पर नैतिक न्याय देने के लिए विवश हो जाता है। बटरफील्ड का अभिमत है कि अतीतकालिक दो दलों तथा परस्पर विरोधी गुटों के बीच संघर्ष पर निर्णय देने वाला इतिहासकार न्यायाधीश होता है। उसका नैतिक कर्तव्य अन्यायी को दंड देना तथा निरपराधी और निरीह व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना है। यही कारण है कि प्रोफेसर अर्नाल्ड जे टैनबी ने 1935 में मुसोलिनी द्वारा अबिसिनिया पराक्रमण को व्यक्तिगत पाप कहकर निंदा की है। सर इसाया बर्लिन ने भी स्पष्ट कहा है कि यह इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य है कि वे शार्लमेन, नेपोलियन, चंगेज खान, हिटलर तथा स्टालिन की नृशंस हत्याओं के लिए नैतिक न्याय दे। मोटले ने स्पेन के शासक फिलिप द्वितीय के संबंध में लिखा है कि यदि उसे पापाचारों से मुक्त किया जा सकता है तो इसका कारण यह होगा कि मात्र दुराचारों में परिपक्वता मानव स्वभाव में संभव नहीं है। स्टब ने भी सम्राट जान के संबंध में लिखा है कि वह सभी प्रकार के अपराधों से दूषित था जो किसी भी व्यक्ति के लिए लज्जाजनक हो सकता है। इतिहास के गरिमामय कार्यालय में से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पीड़ितों की आवाज को उठाए। वर्तमान में सभी इतिहासकार दक्षिण अफ्रीका की सरकार की रंगभेदी नीति की आलोचना करते हैं। इसी प्रकार इजराइल द्वारा अरब अधिकृत क्षेत्रों में अरबों के पृष्ठ संख्या 157 उत्पीड़न की आवाज उठाना इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य हो जाता है। इतिहासकार तथ्यों की मात्र गवेषणा करने वाला व्यक्ति ही नहीं अपितु समाज द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार युक्त व्यक्ति होता है। वह अपने पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए नैतिक न्याय देने के लिए बाध्य है। बटरफील्ड के अनुसार भावी पीढ़ी का स्वर उसके लिए ईश्वर का स्वर है और इतिहासकार भावी पीढ़ी का स्वर होता है। इतिहासकार तथ्यों की गवेषणा तथा संकलन के पश्चात न्यायाधीश बन जाता है। उसके नैतिक न्याय का आधार सामाजिक मूल्य संपृक्त दृष्टिकोण होना चाहिए। यद्यपि सापेक्षवादी रिलेटिविस्ट इतिहास का सामाजिक मूल्यों को सार्वभौमिक नहीं मानते हैं, परंतु रिकर्ट ने स्पष्ट लिखा है कि सभी सामाजिक मूल्य सार्वभौमिक दृष्टि से वैध एवं यथोचित होते हैं। रेनियर ने भी इतिहास में नैतिक न्याय का समर्थन किया है। नैतिक न्याय इतिहासकार का नहीं अपितु इतिहास का न्याय होता है। शीलर ने शाश्वत मूल्यों पर आधारित इतिहास के सभी न्याय को वैध तथा यथोचित स्वीकार किया है। रोमन साम्राज्य के पतन के संबंध में सेंट अगस्टाइन तथा कार्ल मार्क्स की व्याख्या तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में अर्थपूर्ण एवं यथोचित है। अतः इतिहासकार के सभी न्याय यथार्थ होते हैं। इतिहासकारों में लॉर्ड एक्टन नैतिक न्याय के प्रबल पक्षधर माने जाते हैं। उन्होंने इतिहास की कृतियों में नैतिक न्याय के स्वर को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने का सतत प्रयास किया। नैतिक न्याय के संबंध में वे किसी प्रकार के समझौते के पक्ष में नहीं थे। वे प्रायः कहते थे कि शक्ति की प्रवृत्ति भ्रष्टता की ओर उन्मुख होती है और निरंकुश शक्ति सभी को भ्रष्ट बना देती है। अपने नैतिक न्याय के कारण वे उदारवादियों तथा रोमन कैथोलिकों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय थे। उन्होंने क्रेटन को एक पत्र में लिखा था कि नैतिक संहिता की कठोरता में ही इतिहास की गरिमा उपयोगिता तथा प्रभुत्व का रहस्य है। मेंडलबाम का दृष्टिकोण एक्टन के विचारों में मेल खाता है। उन्होंने कहा है कि अतीत के संबंध में नैतिक न्याय की उपयोगिता है। ऐतिहासिक तथ्य तथा उसकी व्याख्या के संबंध में इतिहासकार का न्याय उसकी कृतियों में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। एक्टन का अटूट विश्वास था कि इतिहास में नैतिकता के स्तर को गिराने का अभिप्राय चर्च तथा निरंकुश राजतंत्र की निरंकुशता को मान्यता प्रदान करना होगा। यदि इतिहास लेखन का अभिप्राय भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन होता है तो प्रत्येक पृष्ठ संख्या 158 इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य अतीतकालिक कुकृत्यों पर कठोर प्रहार करके वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा सुखद एवं सुसंपन्न भविष्य का पथ प्रदर्शन करना चाहिए। हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका द्वारा अणुबम का प्रयोग तथा वियतनाम युद्ध में रसायन अस्त्रों के प्रयोग का परिणाम लाखों लोगों की मृत्यु तथा शारीरिक एवं मानसिक विक्षिप्तता था। यही नहीं, फिलिस्तीनियों की इजरायली सैनिकों द्वारा सामूहिक हत्या तथा फिलिस्तीनी अल्पवयस्क बच्चों का मस्तिष्क रसायन गैस द्वारा शारीरिक विकृति एवं मानसिक विक्षिप्तता की अमानुषिक क्रिया सर्वथा निंदनीय है। इतिहासकार ऐसे कार्यों की सार्वभौमिक निंदा करने के लिए बाध्य है। एक्टन ने स्पष्ट कहा है कि ऐतिहासिक अतीत का सैद्धांतिकरण अनभिज्ञता तथा अस्वीकृति की अपेक्षा अधिक विनाशकारी होगा, क्योंकि यह पाप के शासन को शाश्वत बनाएगा तथा अनौचित्य की राजसत्ता को मान्यता प्रदान करेगा। इतिहास को सैद्धांतिक नियमों के परिवेश में सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियमबद्ध इतिहास अध्ययन में इतिहासकार नैतिक न्याय संबंधी अपने पुनीत कर्तव्य की उपेक्षा कर सकता है। उन्होंने अपने शिष्यों की ऐतिहासिक अतीत के प्रति अधिक प्रशंसा तथा अनावश्यक सहानुभूति के लिए चेतावनी दी। विस्तृत व्याख्या में यह संभावना रहती है कि इतिहासकार प्रायः जो कुछ समझता है उसे क्षमा कर देता है, क्योंकि वह सैद्धांतिक नियमों के प्रति अधिक सतर्क रहता है। मदाम द स्टोएल की भी यही अवधारणा है। एक्टन ने डक द ब्रोगायल की नैतिक न्याय संबंधी अवधारणा अत्यधिक व्याख्या के प्रति सावधान रहो क्योंकि अधिक व्याख्या में क्षमा की संभावना रहती है को स्वीकार किया है। आर्तेगा ने भी इतिहास में नैतिक न्याय का समर्थन किया है। उनके अनुसार मनुष्य का इतिहास नहीं होता है, उसका स्वभाव होता है। नैतिक ज्ञान इतिहास द्वारा प्राप्त होता है। इतिहास में नैतिक अर्थ संसार में सर्वव्याप्त है। यदि इतिहासकार अपनी व्याख्या में मनुष्य के स्वभाव का विवरण प्रस्तुत करता है तो यह स्वाभाविक है कि वह मनुष्य के अच्छे तथा बुरे कार्यों पर प्रकाश डालेगा। कार्यों पर प्रकाश डालने का तात्पर्य नैतिक न्याय होता है। हेनरी पिरेन ने कहा है, इतिहास समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। परिणाम स्वरूप यह आवश्यक हो जाता है कि इतिहासकार अतीतकालिक मनुष्य के कार्यों एवं उपलब्धियों के संबंध में अपना निर्णय दे। निर्णय का अभिप्राय ही नैतिक न्याय होता है।